ओम शांति।
31 मई 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था।
द मॉर्निंग क्लास ऑफ 31 मई 1967 वॉज गोइंग ऑन।
तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी।
इन द मिडल ऑफ द थर्ड पेज द टॉपिक डिस्कस्ड वॉज।
कोई बिरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते।
देर आर वेरी फ्यू हु टेक द 7 डेज कोर्स।
और ये साप्ताहिक पाठ जो करते हैं, गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, ये 7 रोज की बात भी है अभी की है।
द 7 डेज नरेशन विच दे डू इन द पाथ ऑफ डिवोशन, द नरेशन ऑफ द गीता विच दे डू, द नरेशन ऑन द रामायण विच दे डू, दिस इश्यू ऑफ 7 डेज इज ऑल्सो ऑफ द प्रेजेंट टाइम।
7 दिन आपको भट्टी में चढ़ना पड़े।
यू हैव टू रिमेन फॉर 7 डेज इन द भट्टी, दैट इज फर्नेस।
और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने पर सारा किचरा निकल जाएगा।
एंड बाय कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ सोल एंड बाय रिमेम्बरिंग द फादर ऑल द डर्ट विल बी रिमूव।
इसको भट्टी कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड भट्टी।
जैसे भट्टी में सोना गलाया जाता है तो सारी खाद निकल जाती है।
Just as when gold is melted in a furnace, all the dirt is removed.
आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान की।
Body consciousness is a dirty disease of half the cycle.
वो गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है।
To remove that dirty disease, you are placed in the bhatti for 7 days.
देही अभिमानी बनना पड़े।
You have to become soul conscious.
अपन को आत्मा समझना पड़े।
You have to consider yourself as a soul.
7 रोज का कोर्स उठाने वाले बहुत थोड़े हैं।
There are very few who take the 7 days course.
ज्ञान का बाण तो कोई को सेकंड में भी लग सकता है।
The arrow of knowledge may strike anyone in a second.
देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं।
इवन दोज हु कम लेट कैन गो अहेड।
लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं।
इवन दोज हु कम लास्ट कैन गो फास्ट।
और गए भी हैं।
एंड सम हैव गॉन फास्ट टू।
वो कहेंगे कि हम रेस करके बाबा से पूरा वर्षा लेंगे।
दे विल से वी विल रेस एंड टेक द कंप्लीट इनहेरिटेंस फ्रॉम बाबा।
और कोई तो पुरानों से तीखे चले भी जाते।
सम सर्टेनली गो स्विफ्टर देन द ओल्ड वंस।
क्योंकि उनको अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार माल मिलता है।
बिकॉज दे गेट द रेडीमेड स्टॉक ऑफ गुड पॉइंट्स।
प्रदर्शनी आदि पर समझाने में कितना समय जाया जाता है।
हाउ मच टाइम इज स्पेंड एक्सप्लेनिंग इन द एग्जीबिशंस एंड सो ऑन।
सहज तो होता ही है।
इट इज सर्टेनली इजी।
खुद नहीं समझा सको तो कोई दूसरी बहन को बुलाओ।
इफ यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन देन कॉल सम अदर सिस्टर।
रोज आकर के कथा करके जावे।
लेट हर कम डेली नरेट द स्टोरी एंड देन लीव।
5000 वर्ष पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य था।
5000 ईयर्स अगो देयर वॉज द किंगडम ऑफ दीस लक्ष्मी एंड नारायण।
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग में लक्ष्मीनारायण का राज्य था।
इट इज ऑल्सो रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट इन द गोल्डन एज देयर वॉज द किंगडम ऑफ लक्ष्मी नारायण।
वो लक्ष्मीनारायण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
Those Lakshmi Narayan were 16 celestial degrees complete, complete in all virtues, completely non-violent, the best among all the souls in following the code of conduct.
Unke rajy mein sab sukhi the.
Everyone was happy in their kingdom.
दुख का नाम निशान नहीं था.
There wasn't even the trace of sorrow.
ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया?
Who established the kingdom of this Lakshmi Narayan?
उन्होंने नारायण को नर नारायण किसने बनाया?
Who made that Narayan from Nar, that is ordinary human being, to Narayan?
Nar manushi ko kaha jata hai.
Man is called Nar.
Gita mein to likha hua hai.
It is written in the Gita.
Hey Arjuna, tu aisi karni kare.
Oh Arjun, you should do such deeds.
Jo Nar se Narayan bane.
That you become Narayan from Nar.
और हे द्रौपदी, तू ऐसी करनी करे जो नारी से नारायणी बने.
And O Draupadi, you should do such deeds that you become Narayani from Nari, that is woman.
ये ज्ञान गीता में दिया हुआ है.
This knowledge is given in the Gita.
भगवत गीता गाई हुई है.
It is praised as the Bhagavad Gita.
भगवान ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बना सकता है.
Only God can make the deities like Narayan from an ordinary man and Lakshmi from an ordinary woman.
मनुष्यों की पढ़ाइयाँ तो वकील बनावेंगी, डॉक्टर बनावेंगी, इंजीनियर बनावेंगी.
Teachings given by human beings will make lawyers, doctors and engineers.
मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकता.
But no one can make a deity from a human being.
मनुष्य ऊंचा उठता है.
When human being rises high,
तो देवता बनता है.
He becomes a deity.
और मनुष्य नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है.
And when human being declines, he becomes a demon.
भगवान आकर के गिरोहों को ऊंचा उठाता है.
God comes and uplifts the ones who have fallen down.
सत्युग में होते हैं देवताएं.
In the golden age, there are deities.
और कलयुग में होते हैं राक्षस.
And in the iron age, there are demons.
कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है, सत्युग को पावन दुनिया कहा जाता है.
The iron age is called an impure world, and the golden age is called the pure world.
ये पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाने वाला कौन?
Who is the one who makes this impure world into a pure world?
पतितों को पावन कौन बनाएगा?
Who will make the impure ones into pure ones?
सिवाय भगवान को कोई नहीं बना सकता.
Except for God, no one else can make it.
परंतु भगवान कौन है?
But who is God?
सर्वव्यापी कह करके रोला डाल दिया.
By saying he is omnipresent, they have created confusion, that is disturbance.
भगवान सर्वव्यापी नहीं है.
God is not omnipresent.
वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है.
He comes on this world in one, that is एक व्यापी.
और जिस एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है.
And the permanent chariot in which he enters,
पहले उसी को अपने संग के रंग से पति से पावन बनाता है.
First he makes him pure from impure through the color of his company.
नंबर बार और आत्माएं पति से पावन बनती है.
Then the other souls also become pure from impure number wise.
उन लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष चलता है.
The kingdom of those Lakshmi and Narayan lasts for 1250 years.
त्रेता शुरू होता है तो रामराज्य शुरू हो जाता है.
After that, when the silver age begins, the kingdom of Ram begins.
वो भी 1250 वर्ष.
That also lasts for 1250 years.
इस तरह.
In this way.
भगवान का स्थापन किया हुआ राज्य 2500 साल चलता है.
The kingdom established by God lasts for 2500 years.
वो स्वर्ग का राज्य है.
That is the kingdom of heaven.
नरक को स्वर्ग बनाना भगवान का काम है.
To make hell into heaven is the task of God.
जैसे दिन दिन के बाद रात होती है.
Then like there is day and after the day there is night.
ऐसे ही स्वर्ग बदल करके नरक बनता है.
In the same way, heaven also changes into hell.
एक दम नरक नहीं बन जाता है.
It doesn't become hell all at once.
धीरे धीरे मनुष्य की कलाएं कम होती है.
Little by little, the celestial degrees of human beings decline.
सुख भोगने से
By enjoying happiness,
आत्मा की पावर कम होती जाती.
The power of the soul keeps reducing.
आत्मा जैसे कि एक बैटरी है.
The soul is like a battery.
जो भ्रकुटी के मध्य में रखी हुई है. एक सितारे की मिसल.
Which is kept in the center of the forehead like a star.
इतनी छोटी सी बैटरी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है.
The part of the 84 births is filled in such a small battery.
यों यों सुख भोगते जाते हैं, क्यों क्यों आत्म की स्थिति कम होती जाती
है. As much as we go on experiencing happiness, that much the consciousness of the soul goes on reducing.
देवान आने से दुख बढ़ता है.
Sorrow increases on coming into body consciousness.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता है.
Lust, anger, greed, attachment and ego increase.
अगर अपन को आत्मा ही समझे.
If you consider yourself to be just a soul,
पक्की प्रैक्टिस करें
and practice it firmly,
तो काम विकार भी तंग नहीं कर सकता.
Then even lust cannot trouble you.
अपन को देह समझते हैं.
You consider yourself to be a body.
तो देह भान आने के कारण काम विकार आता है.
Then because of body consciousness, lust emerges.
देह समझने से
By thinking yourself to be a body,
क्रोध आता है.
Anger emerges.
लोभ आता है, मोह आता है.
Greed emerges. Attachment emerges.
अहंकार आता है.
Ego emerges.
अगर अपन को आत्मा समझे, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें.
If you consider yourself to be a soul and also see the others as a point of light soul,
तो पांचों विकारों की प्रविष्टता नहीं हो सकती.
Then the five vices cannot enter.
ये प्रैक्टिस अभी परमात्मा बाप आकर के कराते हैं.
Now the Supreme Soul Father comes and makes us do this practice.
कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है.
No human being knows that we are a soul, a point of light.
शास्त्रों में लिख दिया है अणुअणियांसम.
It is written in the scriptures.
अणुअणियांसम आत्मा अणुरूप है.
The soul is like an atom.
लेकिन फिर कह देते हैं कि मन जड़ है.
But again, they say that the mind is inert.
अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है.
अरे the mind and intellect itself is called the soul.
मनुष्य मरता है तो ये थोड़े ही कहा जाता है कि उसमें मन बुद्धि रह गई.
When a human being dies, it is not said that the mind and intellect remain in the body.
मन बुद्धि की पावर निकल गई माने आत्मा निकल गई.
When the power of the mind and intellect has gone, it means that the soul has gone.
ये मन बुद्धि की पावर में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए.
The संस्कार्स of many births are filled in this power of the mind and intellect.
मन बुद्धि और संस्कार.
Mind, intellect and संस्कार.
ये तीनों शक्तियों का जो समुच्चय है वो ही आत्मा है.
The collection of these three powers is the soul.
ये आत्मा शरीर से अलग चीज है.
The soul is different from the body.
मृत्यु होती है.
When death takes place,
तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है.
The body separates from the soul.
शरीर में से क्या निकल गया.
What went away from the body?
हाथ पांव नाक आंख कान सब तो मौजूद रहते हैं.
The hands, legs, nose, eyes, ears, everything is present.
फिर वो चलायमान क्यों नहीं होते.
Then why don't they work?
जैसे मोटर होती है.
For example, a motor.
उस उसमें से बैटरी निकाल दी जाए.
इफ द बैटरी इज रिमूव फ्रॉम इट
तो मोटर चलना बंद हो जाती
है. द मोटर स्टॉप्स वर्किंग.
ऐसे ही
इन द सेम वे
ये शरीर रूपी मोटर है.
दिस बॉडी इज लाइक अ मोटर.
इसमें आत्मा रूपी बैटरी है.
द सोल इज लाइक अ बैटरी इन इट.
वो आत्मा रूपी बैटरी अविनाशी है.
दैट सोल लाइक बैटरी इज इम्पेरिशेबल.
अनादि है.
एटर्नल.
सिर्फ उसकी शक्ति कम होती है.
ओनली इट्स पावर इज रिड्यूस्ड.
जब उसकी पावर उन्हें यानी हो जाती है.
व्हेन इट्स पावर इज रिड्यूस्ड
रोशनी कम हो जाती है.
व्हेन द ब्राइटनेस इज रिड्यूस्ड
तो परमपिता परमात्मा शिव रूपी बैटरी को आकर के चार्ज करता है.
देन द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव कम्स एंड रिचार्जेस द बैटरी लाइक सोल.
और एक बैटरी को चार्ज नहीं करता है.
Besides, he doesn't charge only one battery.
नंबरवार मनुष्य मात्र की सर्व की बैटरी चार्ज करके जाता है.
He charges the battery of every human being number wise and then leaves.
चार्ज कैसे होती है.
How is it charged?
याद की स्मृति रूपी डोरी लगाने से.
By connecting the thread of remembrance.
आत्मा चार्ज होती है.
The soul is charged.
और याद कब आती है.
एंड व्हेन इज समथिंग रिमेम्बर्ड.
याद उसी की आती है.
ओनली दैट इज रिमेम्बर्ड
जिसको आंखों से देखा जाता है.
विच इज सीन थ्रू द आईज.
कानों से सुना जाता है.
हर्ड थ्रू द इयर्स.
इंद्रियों से अनुभव किया जाता है.
एंड इज एक्सपीरियंस थ्रू द ऑर्गन्स.
देखी हुई चीज याद जरूर आती है.
The thing which is seen is definitely remembered.
तो भगवान भी सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके दृष्टि से सृष्टि सुधारता है.
And God comes in this world, enters some human body and reforms the world through vision.
ऐसे नहीं और इंद्रियों का संग का रंग नहीं होता.
It is not so that there isn't the connection of other organs.
वो भी पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है.
That also takes place according to the deeds of the previous births.
इसलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए है.
That is why it is said बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही. Whatever is happening is preordained. Nothing new can happen now.
जिनका पूर्व जन्मों का जैसा जैसा हिसाब किताब है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माओं के साथ.
Whatever type of account of the previous births of whichever soul, with the souls playing the part of hero and heroine on this world-like stage,
वैसा वैसा याद की तीक्ष्णता वो आत्मा पकड़ती है.
They attain that type of sharpness of remembrance.
कोई की तीखी याद होती है.
Some have sharp remembrance.
कोई की मध्यम याद होती है.
Some have medium pace remembrance.
कोई की धीमी याद होती है.
And some have slow pace remembrance.
कोई को बहुत परिश्रम करने पर भी याद नहीं आता.
And some don't remember even after putting in much effort.
इसका कारण क्या है.
What is the reason for this?
इसका कारण यही है.
The reason for this is
कि भगवान बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं.
That when God the Father Shiv comes on this world.
और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली रामकृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा काम कराते हैं.
And has the work done through the souls of Ram and Krishna which play the role of hero heroine on this world like stage.
Mata pita ka part bajate hain.
And play the part of mother and father through them.
Koi atma kam connection mein aati hai. Koi atma zyada connection mein aati hai.
some souls come in their connection to a lesser extent and some souls come in their connection more.
Jo zyada connection mein aati hain wo automatic jaasti yaad aata hai.
The souls which come in the connection more naturally remember more.
Kam connection mein aane wali unko kam yaad aata hai.
Those who come in connection less remember less.
हिसाब किताब बना हुआ है अनादि अविनाशी.
The imperishable eternal account is already made.
इसलिए कहा जाता है.
That is why it is said.
आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है.
The soul is imperishable and the part which is in it is also imperishable.
और आत्मा.
Every soul.
उसमें जैसे कि अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं.
It is as if the sanskars of many births are merged in it.
जैसे कोई रिकॉर्ड होता है.
For instance, a tape record.
पुराने जमाने में.
In old times.
तवे के मिसल रिकॉर्ड होते थे.
There used to be records of the size of a frying pan.
ग्रामोफोन पर रख करके बजाए जाते थे.
They were placed on a gramophone and played.
सुई समय की जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे वो रिकॉर्ड बजता जाता है.
As the needle of time moves, the record plays likewise.
तो ये सृष्टिरूपी ड्रामा है.
This is a world like drama.
5000 वर्ष का ड्रामा है.
It is a drama of 5000 years.
उस ड्रामा में जैसे जैसे समय की सुई घूमती जाती है आत्मा अनेक जन्मों में अपना अपना पार्ट बजाती जाती है.
In that drama, as the needle of time moves, the soul plays its part in many births.
2000 साल तक.
For 2500 years,
आत्मा सुख का पार्ट बजाती है.
The souls play the role of happiness.
और उसके बाद 2500 साल तक.
And after that for 2500 years,
आत्माएं नंबर वार दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाती.
The souls play the role of obtaining sorrow number wise.
सुख की सृष्टि को दिन कहा जाता है.
The world of happiness is called day.
और द्वापर कलयुग की सृष्टि को रात कहा जाता है.
And the world of copper and iron ages is called night.
जहाँ सब अज्ञान अंधकार में भटकते हैं अपने को देह समझते हैं.
Where everyone wanders in the darkness of ignorance and considers himself to be the body.
देह रूपी मिट्टी समझने के कारण.
Because of considering the self to be the body like soil.
आत्मा देह अभिमान में डूबती चली जाती है.
The soul goes on drowning in body consciousness.
देवताओं को अपनी आत्मा की स्मृति रहती है सत्यगुत्रिका में.
The deities have the consciousness of the soul in the golden and silver ages.
द्वापर शुरू होता है.
When the copper age begins,
तो आत्मिक विस्मृति हो जाती.
The consciousness of the soul is forgotten.
क्यों हो जाती है विस्मृति?
Why is it forgotten?
क्योंकि द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है.
Because the age of dualism, the copper age begins.
सत्युग त्रेता है अद्वैत युग.
The golden and silver age is the age of non-duality.
वहाँ दो नहीं होते.
There aren't two over there.
एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक वंश होता है, एक भाषा होती है सारी दुनिया में.
There is one king, one kingdom, one religion, one clan, one dynasty, one language in the entire world.
इसलिए सुख ही सुख होता है.
That is why there is only happiness.
उसको कहते हैं अद्वैत राज्य.
That is called the non-dual kingdom.
फिर समय पलटा खाता है.
Then the time changes.
2000 वर्ष के बाद द्वापर शुरू होता है.
After 2500 years, the copper age begins.
ये द्वैत फैलाने वाला कौन?
Who spreads duality?
द्वैतवादी दुनिया बनाने का निमित्त कौन बनता है?
Who becomes the instrument in making the dual world?
Ram aate hai.
When Ram comes,
to Advaitavadi duniya banate.
He makes the non-dual world.
Satyuga Treta ki devatai duniya ka sajan karte hai.
He creates the deity world of the golden and silver ages.
Aur Ravana aate hai, to Advaitavadi duniya banate.
And when Ravan comes, he makes the dualistic world.
Ab ye Ravan kaun?
Now, who is Ravan?
Satyuga Treta mein ek hi dharma tha.
In the golden and silver ages, there was only one religion.
Dwapar Kaliyuga mein anek dharma hote hain.
In the copper and iron ages, there are many religions.
To ekata mein sukh hoga.
So, will there be happiness in unity?
Ya anekata mein sukh hoga.
Or will there be happiness in diversity?
Ekata mein sukh hota hai. Anekata mein dukh hota hai.
There is happiness in unity and sorrow in diversity.
Dwapar Yug se Ibrahim, Buddha, Christ, Guru Nanak aakar ke alag alag dharma sthapan karte hain.
From the copper age onwards, Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak come and establish different religions.
Alag alag mate ban jati hain.
Many different opinions come up.
Alag alag kul ban jate hain, alag alag raj ban jate hain.
Different clans emerge, different kingdoms emerge.
Aur sab aapas mein takrate hain.
And all of them fight with each other.
Unke takrane se kalah kalesh yugi duniya kaliyug ka nirman ho jata hai.
Their fight results in the construction of the world of disagreement and quarrels, that is the Iron Age.
Sab dukhi ho jate hain.
Everyone becomes miserable.
Tunde tunde mate bhinna.
Tunde tunde mate bhinna, that is, every head has a different opinion.
Ek hi parivar mein maa ki mat baap se nahi milti.
In a single family, the mother's opinion doesn't match with the father's.
Baap ki mat bachche se nahi milti.
And the father's opinion doesn't match with the son's.
Bachchon ki mat bachchiyon se nahi milti.
And the son's opinion doesn't match with the daughter's opinion.
Parivar parivar mein bigatan hota hai.
There is disunity within every family.
Ab aisi bigati to hi duniya ko jodne wala kaun hai?
Well, who is the one who combines such a disunited world?
2000 varsh ki history manushya ke paas maujood hai.
The history of 2500 years is present with the human beings.
Duniya bigatit hoti aayi hai.
The world has been dividing.
Judne ka naam nishan nahi.
There is no trace of becoming united.
Dil tootte chale jaate hain.
The hearts go on breaking.
Judne ka naam nahi.
There is no trace of becoming united.
Aakhri din dilon ko jodne wala kaun?
Who is the one who finally unites these hearts?
Dilawar baap hai.
He is the beloved father.
Sab bindu bindu aatmaon ka baap.
The father of all the point-like souls.
Wo janam maran ke chakkar se nahi aa raha hai.
He is detached from the cycle of birth and death.
Uski bindi ka hi naam Shiva hai.
The name of his bindi itself is Shiv.
Shiva ka linga banaya jata hai.
The Shiv's ling is made.
Ling ko haath paon naak aankh kaan nahi dikhai jati.
The hands, legs, nose, eyes and ears are not shown on the ling.
Kyunki wo sadaiv jyoti bindu swaroop hai.
Because he is always the embodiment of the point of light.
Phir jab usko haath paon naak aankh kaan hai hi nahi, phir wo srishti ka kalyan kaise karta hai?
When he doesn't have hands, legs, nose, eyes and ears, how does he bring about the benefit of the world?
Gita mein ek shabd bhi aaya hai, praveshtum.
A word has come in the Gita as well, praveshtum.
Main pravesh karta hu.
I enter.
Pravesh karne yogi hoon.
I am capable of entering.
Jaise bhoot preta atmaye pravesh karti hai.
like the souls of the ghosts enter.
वो तो भूत प्रेत हैं.
They are just ghosts.
ये तो भगवान है.
But he is God.
ये भी प्रवेश कर सकता है.
He too can enter.
इस सत्य रूपी रंगमंच की मनुष्य आत्माओं में से जो भी पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं.
Among the show-like actors in this world, whoever are the eminent actors,
उन हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली राम कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करके,
by entering the souls of Ram and Krishna, who play the roles of the hero heroine,
एक का नाम देता है ब्रह्मा.
He gives the name of Brahma to one.
ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ.
Brahm means big and Ma means mother.
भगवान ने सृष्टि रूपी रंगमंच की माता का पार्ट बजाता है.
God plays the role of the mother on this world like stage.
सबको प्यार ही प्यार देता है.
He gives love and only love to all.
कोई अनुभव बच्चा नहीं करता कि माँ ने हमें टेढ़ी नजर से कभी देखा.
No child experiences that the mother has ever given them an angry look.
कोई कह नहीं सकता.
No one can say so.
आज देश देश में, शहर शहर में, गांव गांव में जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं.
Today, the institutes of the Brahma Kumaris, which are spread in various countries, various cities and various villages,
ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान बाप
आर द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट दैट गॉड द फादर
ब्रह्मा के तन में आकर के माँ के रूप में पालना करता है.
कम्स इन ब्रह्मास बॉडी एंड सस्टेन्स द चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ द मदर.
माँ के रूप में प्यार देता है.
ही गिव्स लव इन द फॉर्म ऑफ द मदर.
बच्चों को ज्ञान का दूध पिलाता है.
He nurses the children with the milk of knowledge.
बच्चे तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं.
The children are certainly number wise according to their effort.
कोई बच्चे जहीन होते हैं तो पढ़ लिख करके ऊंचा पद पाते हैं.
Some children are intelligent and they study well and achieve a high position.
कोई दल बुद्धि होते
हैं. Some are dull headed.
कोई भगवान की बेसिक नॉलेज पढ़ करके ही रह जाते हैं.
सम जस्ट स्टडी द बेसिक नॉलेज गिवन बाय गॉड एंड लिमिट देमसेल्व्स टू दैट.
और कोई भगवान की पढ़ाई हुई ऊंची पढ़ाई भी पढ़ते हैं.
वेयर एज सम आल्सो स्टडी द हायर नॉलेज गिवन बाय गॉड.
जो ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वो नर से डायरेक्ट नारायण इसी जन्म में बन जाते हैं.
Those who study the highest on high studies become Narayan directly from Nar, that is man, in this birth itself.
भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाता.
God on coming doesn't teach blind faith.
जैसे गुरु लोग कहते हैं यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, अगले किसी जन्म में पुरुषार्थ करते करते मनुष्य से देवता बन जाएंगे.
Just like the gurus say, keep making effort here and you will become a deity from a human being in some other birth while you go on making effort.
ऐसी अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं.
There is no question of such blind faith here.
जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं.
Just like there are schools and colleges.
तो ये थोड़ा ही कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई पढ़ो अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना.
It isn't said there. Study here and become a doctor in the next birth.
यहाँ पढ़ाई पढ़ना है अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना.
Or study here and become an engineer in the next birth.
फिर कौन पढ़ाई पढ़ेगा? किसी को विश्वास ही नहीं होता.
If it is said so, who will study? No one will believe it.
कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा.
No one will make effort.
यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं.
Here, God the Father says.
कि बच्चे मैं जो तुम्हें रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर अगर तुम चलेंगे.
Children, if you follow the path which I show you,
कर्म अकर्म और विकर्म की गति को सीखेंगे.
If you learn the manner of karma, akarma, vikarma,
दूसरों को सिखावेंगे.
And teach the others,
अपना जीवन बनावेंगे, दूसरों का जीवन बनावेंगे.
If you create your own life and also create the other's life,
तुम्हें गारंटी करता हूँ तुम इसी जन्म में नर से नारायण जैसे देवता और नारी से लक्ष्मी जैसी देवी बन जावे।
I guarantee you will become deities like Narayan from Nar and Lakshmi from Nari in this birth itself.
जो देवी देवता बनेंगे
Those who will become deities,
उनकी दुनिया बरकरार रहेगी
Their world will be preserved.
और बाकी जो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे
And the rest who do not make effort to become deities,
उनको इस दुनिया में जो विनाश बरपा होना है उसमें अपने शरीर को जबरियन छोड़ना पड़ेगा
विल बी फोर्स्ड टू लीव देयर बॉडीज व्हेन द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड
उसके लिए
फॉर दैट
एटम बम बन चुके हैं
एटम बॉम्ब्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड
आज से 70 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था
देयर वाजंट एनी ट्रेस ऑफ एटम बॉम्ब्स 70 इयर्स अगो
क्योंकि 70 साल पहले भगवान ही नहीं आया हुआ था
बिकॉज God hadn't come 70 years back.
70 साल के अंदर ही ये एटमिक एनर्जी भयंकर बारूद तैयार हो गई.
Within these 70 years, this atomic energy, a terrible ammunition, was prepared.
इस एटमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा.
Through this atomic energy, the entire world will be destroyed.
सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे.
Everyone will have to leave their body.
कौन बचेंगे?
And who will survive?
वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी.
Those who have learned the technique of remembrance will survive.
भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए.
They should be so much immersed in the intense remembrance of God the Father that they forget even the process of breathing.
Atomic विस्फोट उनको असर ही नहीं करेगी.
The atomic explosion will not affect them at all.
जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी.
The odor which spreads will not affect them.
बाकी जिन्होंने उस योग की राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा
The rest of those who would not have learned the process of Raj Yoga,
उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा.
Will be forced to leave their bodies.
हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे.
They will leave their bodies, weeping in grief.
और अंत मते तो अनेक जन्मों के लिए गति बन जावे.
According to their thoughts, in the end, they will have their destiny for many births.
वो अनेक जन्म दुख भोगते हैं.
Some experience sorrow for many births.
कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं.
While some experience happiness for many births.
जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं.
The souls which experience a larger part of happiness for many births.
वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती
हैं. Are called the souls of the ancient deity religion.
और जो अनेक जन्मों में दुख भोगने वाली आत्माएं हैं.
And the souls which experience sorrow in many births,
वो कलयुग के अंत में आकर के राक्षसी जन्म लेती है.
Come and take devilish births at the end of the Iron Age.
एटम बम जैसी घातक चीजों का निर्माण करने में अपनी बुद्धि लगाती है.
They use their intellect in the creation of destructive things like atomic bombs.
कोई तो बनाने वाले होते हैं.
Some are the creators.
कोई बिगाड़ने वाले होते हैं.
And some are the ones who destroy.
मकान को बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है.
Do the ones who build a house get more money?
या मकान को तोड़ने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है.
Or do the ones who destroy the house get more money?
बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है.
The ones who build get more money.
भगवान बाप भी षष्ठी रूपी मकान का मालिक है.
Similarly, God the Father is the master of this world like house.
वो भी षष्ठी पर आता है तो फ्री छोड़ देता है.
When he comes on this world, even he gives full freedom.
चाहे मकान बनाने का काम करो और चाहे बिगाड़ने का काम करो.
If you wish, you can construct the building, or if you wish, you can destroy the building.
बनाने का काम वो ही कर सकेंगे जो मेरी मत पर चलेंगे.
Only those who follow my direction will be able to do the task of construction.
और बिगाड़ने का काम वो करेंगे जो मनुष्य की मतों पर चलेंगे.
And those who follow the directions of human beings will do the work of destruction.
अनेक देहधारी मनुष्य गुरु हैं.
Many bodily human gurus are there.
उन मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते चलते 2500 वर्ष में सारी दुनिया गड्ढे में चली गई.
Following those human gurus for 2500 years, the entire world has gone into the ditch.
सब दुखी हो गए.
Everyone has become sorrowful.
जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए.
It should become fixed in the intellect of the intelligent children of the intelligent father.
कि मनुष्य गुरुओं से शक्ति का पतन होता है.
That through the human gurus, the world is degraded.
और एक भगवान की श्रीमत से सारी शक्ति का उत्थान होता है.
And the श्रीमत of one God uplifts the entire world.
भगवान आते हैं.
When God comes,
तो गति सदगति का रास्ता बताते.
He shows the path to salvation and true salvation.
हर एक मनुष्य आत्मा की नंबरवार गति और सदगति होती.
Every human soul attains salvation and true salvation number wise.
पहले गति होती है बुद्धि की.
At first, the salvation of the intellect takes place.
मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील बन जाती है.
द माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल बिकम्स एक्टिव.
कैसे बनती है?
हाउ डज इट बिकम सो?
देह समझने से मिट्टी याद आवेगी.
बाय कंसिडरिंग योर सेल्फ अ बॉडी, सॉइल विल बी रिमेम्बर्ड.
अपने को देह के रूप में देखेंगे, संबंधियों को देह के रूप में देखेंगे.
इफ यू कंसिडर योर सेल्फ अ बॉडी and the relatives as bodies,
तो मिट्टी को याद करने से बुद्धि मिट्टी बनती है.
Then by remembering soil, the intellect becomes like soil.
और अपन को ज्योति बिंदु आत्मा स्टार समझने से आत्मा चैतन्य बनेगी.
And by considering yourself as a point of light soul, a star, the soul will become sentient.
रोशनी वाली बन जाएगी.
इट विल बिकम ब्राइट.
सूक्ष्म बन जाएगी.
इट विल बिकम सटल.
और सूक्ष्म आत्मा ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कर सकेगी.
एंड द सटल सोल विल बी एबल टू एंटर द डेप्थ्स ऑफ नॉलेज.
इसलिए बाप कहते हैं.
दैट इज व्हाई द फादर सेज.
पहले पहले सीढ़ी यह चढ़ो.
क्लाइम दिस लैडर फर्स्ट.
कि मैं यह देह नहीं हूँ.
I am not this body.
मिट्टी का पुतला नहीं हूँ.
I am not a doll of clay.
मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ.
I am a point of light soul. I am a star.
वो स्टार आसमान में होते हैं, वो जड़ सितारे हैं.
Those stars are in the sky. They are lifeless stars.
और तुम नंबरवार धरती के चैतन्य सितारे हो.
And you are the number wise living stars of the earth.
गहन है 9 लाख सितारों का.
There is a praise of the 9 lakh stars.
9 लाखा हार का.
Of the garland of 9 lakhs.
ये 9 लाख सितारे वही आत्मा रूपी सितारे हैं.
These 9 lakh stars are the same souls in the form of stars.
जो कयामत के समय में सारी सृष्टि में ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं.
Which at the time of destruction spread the light of knowledge in the entire world.
बाकी 500 करोड़ की 700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है उनके सामने सब अज्ञानी है.
And the rest of the world of 5 to 7 billion human beings are ignorant in front of them.
उन 500-700 करोड़ भगवान बाप को उतना नजदीक से नहीं पहचाना.
Those 5 to 7 billion souls do not recognize God, the father that closely.
देह अभिमान में रह करके अहंकार देह का आने से भगवान बाप को नहीं पहचान सके.
Due to being body conscious and due to having the ego of the body, they can't recognize God the Father.
और जो निरहंकारी बन करके भगवान बाप को पहचानते हैं,
those who become egoless and recognize God the Father,
वो नजदीक होने के कारण ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं.
Attain godly powers because of being close.
उनको पहली शक्ति मिलती है याद की शक्ति.
The first power they receive is the power of remembrance.
मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को कोई विरले ही समझते हैं.
Very few understand my form as I am, how I am and the role I am playing.
सब नहीं समझ सकते.
Not everyone can understand it.
जो समझते हैं,
those who understand it,
जानते हैं, पहचानते हैं, वो गहरी याद भी करते हैं.
Realize it, recognize it, also remember deeply.
भगवान बाप तो सब आत्माओं से जास्ती सूक्ष्म है.
God the Father is very subtle in comparison to all the other souls.
अति सूक्ष्म है, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है.
He is extremely subtle. He is called the intellect of the intellectuals.
वो जिस तन में प्रवेश करता है, उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज समझाता है.
He explains the subtlest secrets of knowledge through the body in which he enters.
और वो ज्ञान सबकी समझ में आ सकता है.
And that knowledge can be understood by everyone.
गरीब हो,
whether he is poor,
रईस हो,
whether he is rich,
शरीर से स्वस्थ हो,
whether he has a healthy body,
बीमार धीमार हो,
whether he is ill,
लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी हो,
whether he is crippled, lame, blind or a leper,
सब कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है.
Everyone can understand the knowledge given by God.
कोई जाति का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं.
There are no boundaries of caste, religion, country or society.
कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान के ज्ञान को सहज ही समझ सकती है.
Any human soul can easily understand the knowledge given by God.
भगवान के लिए तो गाय नहीं है मुश्किल को सहज करने वाला.
There is indeed praise for God, the one who alleviates difficulty.
तो उसका ज्ञान मुश्किल कैसे हो सकता है?
Then how can his knowledge be difficult?
अगर कोई प्रयास करे,
if someone tries,
तो जरूर समझ सकता है.
He can surely understand it.
प्रयास ही नहीं करेगा,
if he doesn't try at all,
इच्छा ही नहीं करेगा,
if he doesn't wish to try at all,
तो समझने की बात ही नहीं.
Then there is no question of understanding it at all.
इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में,
that is why the knowledge which God gives in the Gita,
उस गीता के ज्ञान को सहज ज्ञान और सहज राजयोग कहा जाता है.
That knowledge of the Gita is called easy knowledge and easy Raj Yoga.
भगवान की याद तो बहुत सहज होनी चाहिए.
It should be very easy to remember God.
क्योंकि भगवान ही सुखों का सागर है.
Because God is the ocean of happiness.
जो सुखदाता कहा जाता है उसकी तो याद आनी चाहिए.
The one who is called the giver of happiness should be remembered.
रावण दुखदाता है उसको कोई याद नहीं करता.
Ravan is the giver of sorrow. No one remembers him.
राम को याद करने की कोशिश करते हैं.
They try to remember Ram.
लेकिन राम कौन है ये पहचानते नहीं.
But they don't know who Ram is.
पहचान करके याद करेंगे.
If they remember after recognizing him,
तो प्राप्ति जास्ती होगी.
Then there will be more benefit.
बिना पहचाने याद करेंगे,
if they remember without recognizing him,
तो प्राप्ति नहीं हो सकती.
There won't be benefit.
अप्राप्ति भी हो सकती है.
And there can even be lack of attainment.
Wastage of time, money or energy हो सकता है.
There can be a waste of time, money and energy.
क्योंकि अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते.
Because they remember with blind faith.
जिसने जो सुनाया.
Whatever whoever says.
उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं.
They start to follow that path.
उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है.
It is called blind faith.
भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते.
God doesn't teach blind faith when he comes.
वो तो स्पष्ट बताते हैं बच्चे तुम आत्मा हो.
He says clearly, children, you are a soul.
तुम शरीर नहीं हो.
You are not a body.
शरीर तो पांच तत्वों का पुतला है. इसको मिट्टी का पुतला कहा जाता है.
The body is a doll of five elements. It is called a doll of clay.
गर्भ में चार पांच महीने ये पुतला तैयार होता है.
The doll is prepared in the womb for 4 to 5 months.
गर्भपिंड निर्जीव होता है.
The fetus in a womb is lifeless.
कोई हरकत नहीं करता.
It doesn't do any action.
जब चार पांच महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है.
When a soul enters after 4 to 5 months.
तो पेट में चुरुपुर होती.
Then the movement takes place in the stomach, that is womb.
माँ को भी पता चलता है.
And the mother comes to know it as well.
तो आत्मा अलग चीज.
Therefore, the soul is a different thing.
और देह अलग चीज.
And the body is different.
अब ये wonderful कुदरत है कि गर्भ में जो आत्मा प्रवेश करती है.
Well, this is a wonder of the nature that the soul which enters the womb.
उसका चोला चार पांच महीने पहले ही तैयार होने लगता है.
Its body starts to be prepared already 4 to 5 months before.
चार पांच महीने पहले वो आत्मा कहीं दूसरी जगह जीवित थी.
4 to 5 months previous to that, the soul was alive somewhere else.
जीवन धारण किए हुए थी. शरीर सहित थी.
It had life. It was in a body.
चार पांच महीने पहले ही उसका चोला तैयार होने लगता है. उसके कर्म संस्कारों के अनुसार.
4 to 5 months previously, its body starts to be prepared according to its karmic संस्कार्स.
जैसे जैसे उसके कर्म के संस्कार होते हैं वैसा वैसा उसका वायुमंडल बनता है.
The atmosphere around is made according to its karmic संस्कार्स.
उस वायुमंडल वाइब्रेशन के आधार पर.
According to that atmosphere and vibration.
वो आत्मा का चोला पहले ही तैयार हो जाता है किसी माता के गर्भ में.
The body for that soul becomes ready beforehand in some mother's womb.
टाइम पूरा होता है.
When the time is over.
मनुष्य शरीर छोड़ता है.
The human soul leaves his body.
और अपने गर्भ में प्रवेश कर जाता है.
And enters in the womb fixed for him.
चार पांच महीने और लगते हैं.
It takes 4-5 months more.
9 महीने के बाद जन्म होता है.
After 9 months, the birth takes place.
वो इस स्थूल दुनिया की स्थूल बातें.
These are the physical facts of this physical world.
भगवान बाप ही इस सृष्टि पर आते हैं. तो बेहद का जन्म देते हैं.
God the Father gives unlimited birth when he comes in this world.
वो माता के पेट में होता है हद का जन्म.
That birth through the womb of a mother is limited birth.
और भगवान बाप आते हैं.
And when God the Father comes.
तो आत्मा रूपी बच्चों को देते हैं बेहद का जन्म.
He gives the unlimited birth to the soul like children.
हद का जन्म लेने वालों को भी 9 महीने पेट में पकना पड़ता है.
Those who take the limited birth have to become mature in the womb for 9 months.
ये बेहद का जन्म लेने वालों को भी.
Those who take the unlimited birth also.
9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना पड़ता है.
Have to bake, that is stay in the bhatti, that is furnace of knowledge and remembrance for 9 days.
एक दिन आना और एक दिन जाना.
One day is for the arrival and one is for the departure.
और बाकी सात दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना.
And the rest of the 7 days are for baking in the furnace of knowledge and remembrance.
जैसे गर्भ में से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती.
Like a soul cannot come out of the womb.
गर्भ में ही उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है.
It receives food, drink and everything else in the womb itself.
कोई बाहर की दुनिया की जानकारी नहीं.
It doesn't have any knowledge of the outside world.
ऐसे ही भगवान बाप भी जब आते हैं.
Similarly, when God the Father comes,
तो अपने उन 9 लाख आत्मा रूपी सितारों को भट्टी में पकाते.
He bakes his 9 lakh soul-like stars in the bhatti.
ये ज्ञान गर्भ की जैसे कि 9 महीना बराबर 9 दिन की ये भट्टी है.
This is the bhatti of 9 days in the womb of knowledge, which are equal to the 9 months.
आत्मा पकती है.
The soul becomes mature.
और परिपक्व होकर के जब बाहर निकलती है.
When the soul comes out after becoming completely mature,
तो बाप का बच्चा कही जाती.
It is called the father's child.
लौकिक दुनिया में भी आत्मा प्रवेश करती है.
Even in the laukic world, when a soul enters the womb,
तो बाप का बच्चा कही जाती है.
Is it called a child of his father?
या 9 महीने के बाद जन्म लेती है तो बाप का बच्चा कही जाती है.
Or is it called the child of his father when he takes birth after 9 months?
जब जन्म लेती है तो बाप का बच्चा कही जाती है.
When it takes birth, it is called the father's child.
ऐसे ही यहाँ भी.
Even here, it is the same.
कोई कहे हम तो बहुत पहले से ज्ञान सुनते थे.
If someone says we had been listening to knowledge for a long time.
ज्ञान सुनना अलग बात.
Listening to knowledge is different.
ज्ञान को समझना भी अलग बात.
Understanding the knowledge is also different.
लेकिन पक्का निश्चय धारण कर लेना.
But to have firm faith
कि यही हमारा बेहद का बाप है.
That he alone is our unlimited father.
आत्मा का बाप है.
He is the father of the soul.
देह के बाप तो 84 जन्म धारण किए.
We have had fathers of the body in 84 births.
ये हमारी आत्मा का बाप है.
He is the father of our soul.
84 जन्म में तो 84 बाप अलग अलग होते हैं.
The 84 fathers in the 84 births are different.
हर जन्म में अलग अलग बाप हो जाते.
There is a different father in every birth.
यहाँ तो 84 के चक्र का एक ही बाप है आत्मा का.
And here is only one father of the soul for the cycle of the 84 births.
वो देह के बाप होते हैं. देह को जन्म देने वाले होते हैं.
They are the fathers of the body. They are the fathers who give birth to the body.
देवान बढ़ाने वाले बाप होते हैं.
They are the fathers who increase body consciousness.
ये आत्मा अभिमानी बनाने वाला बाप है.
This one is the father who makes us soul conscious.
रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप है. रूह बनाने वाला बाप है.
He is the father who teaches us spiritual studies. He is the father who makes us into a soul.
वो बाप को पहचानने के लिए.
To recognize that father.
ये 7 दिन मुकर्रर किए हुए हैं.
These 7 days are fixed.
इसे साप्ताहिक कोर्स कहो. 7 दिन की भट्टी कहो. 7 दिन का राजयोग शिविर कहो.
Call it a weekly course, 7 days bhatti और 7 days Rajyoga camp.
जहाँ मनुष्यात्मा बाहर की दुनिया से कट हो जाती है.
Where human souls become cut off from the outside world.
उनको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता.
They are not allowed to go out.
कोई को चिट्ठी भी नहीं ले सकते.
They cannot even write a letter to anybody.
फोन से बात भी नहीं कर सकते.
They also cannot speak to someone on a phone.
एकदम अंदर ही अंदर पकना होता है.
and they have to become mature by remaining completely inside.
उन आत्माओं में कोई बहुत पक्की होकर के निकलती है.
Among those souls, few come out very firm.
कोई बहुत कच्ची होकर के निकलती है.
Few come out very immature.
कोई मीडियम होकर के निकलती है.
And few come out moderately firm.
जैसे वो ईंटों का भट्टा होता है.
Like there is a physical furnace for baking bricks.
तो ज्यादातर ईंटें पक्की परिपक्व होकर के अब्बल लंबर निकलती हैं.
Most of the bricks come out of it firm, completely baked and number one.
कुछ ईंटें दो नंबर निकलती हैं, कुछ ईंटें थर्ड क्लास निकलती हैं.
Few bricks that come out are of second grade, while few bricks come out as third class.
कुछ ऐसी होती है जो जल जाती है, काली खंजर पड़ जाती है.
Few of them burn down, they become blackened and porous.
यहाँ भी ऐसी है.
Here too it is the same.
जो भट्टी करने के टाइम पर बहुत सहज सहज भट्टी पूरी कर लेती है खुशी खुशी.
Those who complete their bhatti very easily and happily.
उनका जैसे 84 जन्मों का फाउंडेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है.
It is as if their foundation of 84 births is laid very nicely.
जैसे कि 84 जन्मों में बहुत सुखी रहने वाली आत्माएं.
It is as if they are the souls which will remain very happy throughout their 84 births.
कुछ ऐसी होती है.
Few are such that
के 7 दिन पूरे ही नहीं कर पाती और भाग खड़ी होती है.
They can't complete even the 7 days and they run away.
उन्हें अगर जबरदस्ती रोका भी जाए तो रोकने से भी नहीं रुकती.
They do not stop even if they are stopped forcibly.
जबरन भट्टी में से बाहर निकल करके भाग जाती.
They get out of the bhatti and run away.
दुनिया में भी ऐसे होता है.
It happens like this even in the world.
कोई बच्चा गर्भ में ही मर पड़ता है.
Some child dies in the womb itself.
पेट काट के बाहर निकालना पड़ता है.
It has to be removed from the womb by cutting it open.
यहाँ भी बुद्धि रूपी पेट है.
Here too it is a womb like intellect.
जन्म देने वाले माता पिता भी होते हैं.
There are also the mother and the father who give birth.
कोई संदेश का बीज डालता है.
Someone sows the seed of the message of the father's introduction.
ज्ञान का बीज डालता है.
He lays the seed of knowledge.
और कोई ज्ञान की परवरिश करता है.
And someone gives the sustenance of knowledge.
तैयार करता है.
He prepares the soul.
कि वो आत्मा ज्ञान गर्भरूपी भट्टी में जाकर के पके.
So that the soul could go into the bhatti of the womb of knowledge and become mature.
बाप को पहचाने.
And recognize the father.
और निश्चय पत्र लिखने की योग्य बने.
And become eligible to write the letter of faith.
यज्ञ के आदि में तो.
At the beginning of the yagya.
खून से लिख करके देते थे.
They used to write with blood and give it.
कि हमने पक्का पक्का बाप को पहचान लिया.
We have truly recognized the father.
अब हम कभी हिलने वाले नहीं.
Now we will never waver.
अभी वो स्थूल खून से लिखने वाली बात नहीं है.
At present it is not a question of writing with physical blood.
यहाँ तो संकल्पों का खून है.
Here it is the blood of thoughts.
अगर संकल्प में दृढ़ता आई है.
If there is determination in the thoughts.
तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा.
Then he will be ready to do anything.
कोर्ट के स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके देने के लिए तैयार हो जाएगा.
He will be ready to write even on a court stamp paper.
Court agreement लिख करके भी देने के लिए तैयार हो जाएगा.
He will be ready to give even an agreement under the court.
Agreement लिख करके दे सकता है. तन मन धन सब तेरा.
He can even write an agreement and give it. The body, mind, wealth is all yours.
तू मेरा ईश्वर बाप है.
You are my God the Father.
मैं तेरा बच्चा हूँ.
आई एम योर चाइल्ड.
जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा.
आई विल डू एज यू से.
कोई निभाते हैं कोई नहीं निभाते हैं.
सम मेंटेन इट वाइल सम डू नॉट.
ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है.
टेकिंग नॉलेज इज नॉट अ ग्रेट थिंग.
सुनना बड़ी बात नहीं है.
Listening knowledge is not a great thing.
समझना बड़ी बात नहीं है.
Understanding knowledge is not a great thing.
दूसरों को सुनाना और समझाना बड़ी बात नहीं है.
Telling the others and making them understand is not a great thing either.
बड़ी बात है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना और अंत तक निभाना.
The great thing is to bring the knowledge practically in life and to maintain it until the last moment.
निभाने वालों को नंबर प्राप्त होते हैं.
Those who maintain it obtain a number, that is position.
निभाने वाले माला के मणके बनते हैं.
Those who maintain it become the beads of the rosary.
ये माला हर धर्म में घुमाई जाती है.
This rosary is rotated in every religion.
कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो.
There isn't any religion in which the rosary is not rotated.
ये माला रूपी संगठन की निशानी है.
This is the memorial of the rosary like gathering.
जो संगठन भगवान बाप ने आकर के बनाया था.
The gathering which God the Father prepared when he came.
वो गुरु लोग तो ऐसे ही टाइटल धराई लेते हैं.
Those gurus just confer titles upon themselves.
Sri Sri 108, Swami Sachidananda Ji Maharaj, vagera vagera.
Sri Sri 108, Swami Sachidananda Ji Maharaj, and so on.
वो तो उनके झूठे टाइटल हैं.
They are just false titles.
अपन को जगत गुरु कहलाते हैं.
They call themselves जगत गुरु.
वास्तव में उनको भारत में भी सब कोई नहीं मानता. जगत की तो बात ही छोड़ो.
But in reality, even in Bharat, not all of them accept them. Leave the world alone.
अरे ये तो जगत गुरु भगवान का टाइटल है.
अरे this जगत गुरु, that is world guru, is the title of God.
भगवान ही सृष्टि पर जब आता है.
When God himself comes in this world,
तो राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा सारी सृष्टि का जगत गुरु बनता है.
He becomes the guru of the whole world through the souls of Ram and Krishna.
सारी सृष्टि उसको सर झुकाती है आगे पीछे.
The entire world bows its head in front of him sooner or later.
ऐसी दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जब लास्ट में दुनिया का विनाश होगा तो गॉड फादर को न मानेगी.
When the destruction of the world takes place in the end, there will be no human soul in the world who will not accept God the Father.
नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो.
Even if he is a steadfast atheist,
उसके मुख से भी निकलेगा ओ गॉड फादर.
It will come out of his mouth too, ओ गॉड द फादर.
मेरी रक्षा करो.
सेव मी.
वो बेहद का फादर है. इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये महान धर्म पिताएं तो हैं.
अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट एंड गुरु नानक आर ऑफ कोर्स ग्रेट रिलीजियस फादर्स.
लेकिन बेहद के बाप नहीं है.
But they are not the unlimited fathers.
क्राइस्ट को फॉलो करने वाले 100-150 करोड़ से भी ऊपर है दुनिया में.
The followers of Christ are more than 1 to 1.5 billion in the world.
वो भी बेहद का बाप नहीं.
He is not the unlimited father either.
बेहद का बाप उसे कहा जाता है जिसकी कोई हद न हो.
The one who has no limits is called the unlimited father.
सारी मनुष्य शक्ति उसको मानने के लिए तैयार हो जाए बाध्य हो जाए.
The entire human world should be ready to accept him. They should be bound to accept him.
वो धर्म पिताए इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी उस गॉड फादर को मानते.
Even those religious fathers, Abraham, बुद्ध क्राइस्ट एंड सो ऑन बिलीव इन गॉड द फादर.
कोई भी धर्म पिता ने अपने को भगवान नहीं कहा है.
No religious father has called himself God.
Christ bhi kehta tha.
Even Christ used to say,
Main Godfather ka bachcha hu.
I am the child of God the Father.
Guru Nanak ne bhi upar ko ungli uthai hai. Ek Omkar Sadguru Akal Murt.
Guru Nanak too has pointed his finger upwards. Ek Omkar Sadguru Akal Murt.
माना वो भी अपन को सदगुरु नहीं कहते थे उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु कहना शुरू कर दिया.
It means that he too did not call himself the Sadguru, but his followers started to call him the Sadguru.
सन्यासियों के आदि गुरु शंकराचार्य.
शंकराचार्य, the first guru of the sannyasis,
वो नारा लगाते हैं.
Utters the slogan.
शिवो हम ब्रह्मास्मि.
शिवो हम, that is I am शिव. ब्रह्मास्मि, that is I am ब्रह्मा.
वो उनका झूठा नारा साबित हो जाता है.
That slogan of his is proved wrong.
अरे शिव नाम तो कल्याणकारी का है.
The name शिव is of the benevolent one.
जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है वो है शिव.
The one who benefits the entire world is शिव.
उससे कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं कि कोई का कल्याण हो जाए.
No action which would harm someone is done through him.
बोलेगा तो कल्याणकारी.
Whatever he says will be beneficial.
सिख लोग कहते हैं.
That is why the Sikhs say.
जो बोले सो निहाल.
जो बोले सो निहाल. Whatever he says gives contentment.
कोई ऐसा वाक्य उसके मुख से निकल नहीं सकता जो कोई का कल्याण करे.
No such word can come out of his mouth which would harm someone.
जहाँ देखेगा कल्याण की दृष्टि से ही देखेगा.
Wherever he sees, he will see with a beneficial vision.
कोई के प्रति उसकी कल्याण की दृष्टि हो नहीं सकती.
His look cannot be harmful towards anyone.
जिन्हें भी स्पर्श करेगा.
Whoever he touches,
उनके प्रति उनको कोई विकारी भावना नहीं हो सकती.
His feelings towards that person cannot be vicious.
विकृत भावना हो ही नहीं सकती.
His feelings cannot at all be vicious.
वो निराकारी है.
He is incorporeal.
निराकारी सो निर्विकारी और निरहंकारी होता है.
The one who is incorporeal is also without vices and ego.
जो देह अभिमानी होते हैं वो विकारी होते हैं.
Those who are body conscious are vicious.
देहंकार वाले होते हैं.
They have bodily ego.
भगवान बाप सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी.
God the Father is incorporeal, without vices and egoless forever.
उसका हर कर्म निर्विकारी है.
Every action of his is without vices.
हर कर्मेंद्रिय निर्विकारी है.
Every organ is without vices.
सन्यासियों ने अपने ऊपर टाइटल रखा लिया.
The sannyasis have conferred titles upon themselves.
शिवोहम.
शिवोहम. I am शिव.
खुद का भी कल्याण नहीं कर सके.
They couldn't bring benefit to themselves.
और अपने फॉलोअर्स का भी कल्याण नहीं कर सकते.
And they couldn't bring benefit to their followers either.
सारी सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है.
The entire world goes on degrading.
भगवान बाप तो आकर के इस सृष्टि को ऊंचा उठाते.
God the Father comes and uplifts this world.
नंबरवार आत्माओं को ज्ञान दे करके.
He gives knowledge number wise to the souls.
पहले उनकी बुद्धि को सुधारते.
And first reforms their intellect.
बुद्धि में ज्ञान बैठता है.
The knowledge sits in the intellect.
ज्ञान से सदगति होती है.
Knowledge brings about true salvation.
वो भगवान तो ज्योति बिंदु है.
God is a point of light.
उसको तो अपना हाथ पांव नाक कान नहीं है.
He doesn't have his own hands, legs, nose, eyes and ears.
निराकारी देश से आने वाला है.
he comes from the incorporeal abode,
निराकारी देश को वापस जाता है,
and goes back to the incorporeal abode.
कोई धन संपत्ति लेकर के तो आता नहीं है.
He doesn't bring wealth with him when he comes.
और कोई की धन संपत्ति लेकर के वापस भी नहीं जाता.
Neither does he go back taking someone's wealth.
वो क्या करके देता है?
What does he give when he comes?
उसके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है?
Which kind of property does he possess?
जो प्रॉपर्टी दूसरों के पास नहीं.
Which no one else has.
कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं.
No other human guru has it.
मनुष्य मात्र के पास नहीं.
No human being has it.
वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो आकर के देता है?
What is the property which he gives?
इसे सारी सृष्टि का कल्याण होता है.
Through which the benefit of the entire world takes place?
क्या देता है?
What does he give?
ज्ञान देता है.
He gives knowledge.
सीधी शांति नहीं देता, सीधा सुख नहीं देता.
He doesn't give peace directly. He doesn't give happiness directly.
वो ज्ञान देता है.
He gives knowledge.
ज्ञान माने जानकारी.
Knowledge means information.
काहे की जानकारी?
Information about what?
सच्चाई की जानकारी.
The information about the truth.
God Father, truth God Father कहा जाता है.
God the Father is called the true God Father.
सत्य को ही truth कहा जाता है.
सत्य is called truth.
God is truth कहा जाता है.
It is said God is truth.
इस सत्य पर आकर के सच्चाई बताता है.
He comes on this world and tells us the truth.
सच्चाई का ज्ञान किसी को नहीं है.
No one has the knowledge of truth.
सत्य बाप की पहचान किसी को नहीं है.
No one has the identification of the true father.
वो सच्चाई का ज्ञान देता है.
He gives the knowledge of truth.
जिन्होंने वो सच्चाई को धारण किया वो सत्य बाप के नजदीक ही कही जाती है.
Whoever has assimilated the truth is said to be near the true father.
पहले पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो.
Firstly, two souls become close to the father.
कौन?
Who are they?
राम और कृष्ण.
राम एंड कृष्ण.
फिर उनकी सहयोगिनी शक्तियाँ.
After that, their cooperative powers.
राम की सहयोगी शक्ति सीता.
राम्स cooperative power सीता.
कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा.
एंड कृष्णास cooperative power राधा.
ये चार आत्माओं का स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाता है.
When the nature and संस्कार of these four souls blend and become one.
यही विशेष चार आत्माएं हैं.
These are the four important souls.
कि भगवान बाप जब आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं.
When God the Father comes and teaches knowledge.
तो उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में जो सबसे पहले सफलता प्राप्त करती है.
Those who assimilate that knowledge in their life and attain success first of all.
वो ये चार आत्माएं.
Are these four souls.
जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं.
Whose nature and संस्कार blend and become one.
इसलिए एक मनुष्य कहा जाता है विष्णु.
That is why Vishnu is called one person.
चार भुजाएं दिखाई जाती.
He is shown to have four arms.
भुजा माने भगवान के कार्य में 100% मददगार.
Arm means 100% helpful in the task of God.
इतना मददगार दुनिया की और कोई आत्माएं नहीं बन सकती.
No other soul in the world can become so helpful.
भुजा माने हेल्पर.
Arm means helper.
ये जो भक्ति मार्ग में चित्र बनाए गए हैं दो ढाई हजार साल पहले बनाए गए थे.
The pictures which are prepared in the path of devotion were prepared 2500 years ago.
अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी आदि गुफाओं में ये भित्ति चित्र तैयार किए गए थे ढाई हजार साल पहले.
2500 years ago, in the caves of Ajanta, Ellora, Elephanta, Taneri, and so on, these pictures were made on the wall. At that time, the world hadn't degraded so much. The human intellect hadn't degraded to that extent either. Therefore, the pictures which were prepared by the painters had truth in them. Later on, looking at those pictures, people wrote the scriptures.
और शास्त्र भी पहले पहले बुद्धि में थे.
The scriptures were in the intellect at first.
शुरुआत में कागज में नहीं लिखे गए.
They weren't written on paper in the beginning.
बहुत वर्षों के बाद फिर कागज में लिखे गए. भोजपत्र जिसे कहा जाता था.
After many years, they were written on sheets of paper, which were called भोजपत्र, that is a species of birch tree.
पेड़ की छाल निकलती थी.
The bark of the tree used to come off.
उस पर लिखे जाते थे.
They were written on it.
वो शास्त्रों का बाद में फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, व्याख्या हुई.
Those scriptures were interpreted later on. They were explained.
शुरुआत में वो व्याख्या भी सच्ची थी.
In the beginning, those explanations were true.
बाद में जैसे जैसे मनुष्य देह अभिमानी बनता गया.
Later on, as human being began to become body conscious,
अपन को और दूसरों को देह के रूप में देखता गया.
As he continued to see himself and the others as bodies,
क्यों क्यों मनुष्यों की बुद्धि मिट्टी बनती गई.
The intellect of human beings became like soil.
देह अभिमानी बुद्धि शास्त्रों की व्याख्या को विकृत करने लगी.
The body conscious intellect started to deform the meaning of the scriptures.
अनेकों ने अनेक प्रकार की शास्त्रों की व्याख्याएं कर दी.
Many have given many different explanations of the scriptures.
एक ही गीता.
There is only one Gita.
उसकी 108 से ज्यादा टीकाएं निकली हुई पड़ी है.
And there are more than 108 explanations of it.
टैगोर गीता कुछ अलग कहती है.
The Tagore's Gita says something.
Madhvacharya ki Gita kuch alag baat kehti hai.
The Madhvacharya's Gita says something else.
Shankaracharya ki Gita kuch alag baat kehti hai.
And the Shankaracharya's Gita says something else.
Saat tikaye ek dusre se takrane wali.
All the explanations conflict with each other.
Shankaracharya ki Gita kehti hai eko brahmaduti una.
The Shankaracharya's Gita says,
एको ब्रह्मदुति होना, एक ही आत्मा है, उसी के अलग अलग रूप हैं.
There is only one soul and all these are various forms of that one.
माध्वाचार्य की गीता कहती है, आत्माएं अनेक हैं, सब अविनाशी हैं.
Madhvacharya's Gita says, there are many souls and all are indestructible.
परमात्मा अलग है.
The Supreme Soul is different. Look, how much difference keeps taking place. The world degrades to the extent to which duality spreads. Many explanations will certainly be false.
भगवान बाप आकर के एक बात बताते.
God the Father comes and gives one explanation.
एक सच्चाई.
One truth.
सच्चाई क्या है?
What is the truth?
मूल रूप में कहो.
If it is said fundamentally.
तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु.
It is I am a soul, a point of light.
और मेरा एक बाप इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, सब धोखेबाज हैं.
And only one father is mine. There is no one else in this world for me. All are frauds.
दो भी ज्योति.
He too is a point of light.
इतना सार में अगर ज्ञान धारण कर लिया,
इफ यू हैव असिमिलेटेड नॉलेज इन द एसेंस फॉर्म,
तो ज्यादा विस्तार में भी जाने की दरकार नहीं,
देन देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग इन टू मोर डिटेल्स एज वेल।
कितनी सहज बात है,
इट इज सच अ सिंपल थिंग।
सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु करते हैं,
ह्यूमन गुरुज कॉम्प्लिकेट व्हाट इज सिंपल,
और मुश्किल को सहज भगवान बाप बनाता है,
एंड गॉड द फादर मेक्स इट डिफिकल्ट इजी।
ओम शांति।